ये लीजिए हाजी साहब।
आपको इत्मीनान है कि आप तालिबे इल्म हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।
जी हाजी साहब, इत्तेफाक से हाजी शहीदी साहब से भी सवाल किया, उन्होंने कहा कोई हज नहीं। ये लीजिए।
ये क्या है?
ये जर्द फिरनी है, सांचे में रखी थी। ये भी आपके खिदमत में। हाजी शहीदी साहब ने एक दफा दरसे अखलाक में एक मुफस्सल बहस की जो मेरी कुकिंग से भी मरबूत थी।
वाह भाई, दरसे अखलाक और कुकिंग।
देखिए, कभी कभी एक तालिबे इल्म तफसीर कुरान की नशस्त में बैठता है ताकि वो तफसीर का दर्स दे, अलबत्ता सिर्फ दुनिया का माल कमाने के लिए। दूसरी तरफ एक कुक उस तालिबे इल्म के लिए खाना बनाता है इस नीयत से कि ये तालिबे इल्म खुदा की रजा के लिए दर्स तफसीर कुरान दे रहा है। कुक को तालिबे इल्म की नीयत का इल्म नहीं और वो कुरान की तबलीग के लिए कुकिंग करता है। ठीक है
जी।
हो सकता है कि, अरे ये भी लीजिए ना, हो सकता है कि वो कुक उस दाल को साफ करने की पादाश में जो उसने तालिबे इल्म के लिए बनाई है जन्नत में जाए, लेकिन वो तालिबे इल्म कुरान की आयतों के बीच में से जहन्नम में चला जाए। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत खुदा के लिए नहीं थी। इसलिए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं ताकि खुदा ना करे कि हमें नुकसान उठाना पड़े।
खुदा अजर दे आपकी होशियारी पर।
मेरे अब्बू एक होटल में कुक थे, खुदा उनकी मगफिरत करे। इसीलिए इस तरह की कुकिंग मेरे खून में है। मुझे याद है कि मैंने 13 साल की उम्र से कुकिंग शुरू की थी।
वाह वाह।
पहली डिश मैंने फिसंजान बनाई थी।
वाह वाह।
या अल्लाह।
या अल्लाह।
खुशामदीद, खुशामदीद।
बैठिए बैठिए हाजी महदवी साहब, आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा, आपकी बहस के दरमियान मुजाहिम हुआ। शेख मुस्लिम साहब, मेरे बरात अली ने रात को सबक पढ़ा।
वल्ला खुदा को तो मालूम है आपसे क्या छिपाना, बेचारा सबक पढ़ने बैठा लेकिन सो गया। आधे घंटे के बाद सहन में गया ताकि नींद उड़ जाए, लेकिन सो गया।
हाय गाफिल अकबर, खुदा तुम्हें समझे। हाजी महदवी साहब, मेरे बरात अली से खेतों में इतना काम लेता है कि जब वो बेचारा आके किताब खोलता है तो आंखों पर स्याही छा जाती है और सो जाता है। अलबत्ता उसकी अपनी गलती है, सारी उसकी अपनी गलती है जो हमें ऐसे जलीलो ख्वार कर दिया है। हाँ माफ कीजिए, क्या करूँ।
हाजी अहमद अली, इतनी टेंशन मत लीजिए, आप ये खाइए।
देखिए मैं ये मशकूक चीजें नहीं खाता, माजरत के साथ, बुरा ना लगे, लेकिन आप खुद ही खाएं, आप ही खाएं।
कैसी मशकूक चीज हाजी अहमद अली साहब, ये तो डब्बा बंद चीज है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
लीजिए हाजी अहमद अली,
आपने हुक्म दिया है तो इनकार नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। खट्टा मीठा है, अजीब सा मजा है, आपने खुद बनाया है?
बरात अली ने भी थोड़ी बहुत मदद की है।
बरात अली को क्या आता है, वो क्या कर सकता है?
बेचारे की बाइक खराब हो गई थी, मजबूर होकर इन सबको खेतों से यहां तक पैदल लेकर आया।
इससे तो बेहतर था कि मैं जहर खा लेता। मैंने कहा था ना कि मशकूक है हाजी साहब, मुझे अंदाजा हो गया था, मैं इसीलिए कह रहा था। मुस्लिम साहब, आप माशाल्लाह तालिब इल्म हैं, इस मौके से फायदा उठा के चंद किताबें याद कर लीजिए कि कल कलां को अगर मस्जिद के मिंबर पर गए तो लोग आपके वजूद से फायदा उठाएं, उनको लुत्फ आए। इन चीजों में अपना वक्त जाया मत करिए। मैं माजरत चाहता हूँ, माफ कीजिएगा जो मैंने आपकी महफिल खराब की। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
ये बरात अली और उनके बाप का किस्सा बड़ा पेचीदा लगता है।
हाजी साहब, ज्यादा अहम नहीं है। इस बरात अली ने इतनी लापरवाही बरती है कि अगर मैंने मुंह खोला तो उसकी गिबत हो जाएगी।
आपने इसी एक जुमले में ही उस बेचारे की काफी गिबत कर डाली है। शहीद सानी फरमाते हैं, बदतरीन गिबत वो है जो उलमा अपने जुमलों से मुर्तकिब होते हैं। जैसे अभी की मिसाल ले लें, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि असल बात क्या है और आप कह रहे हैं कि कहूंगा तो गीबत हो जाएगी। ये तो और भी बुरा है मेरे भाई। अगर आप असल बात बताएंगे तो मुतमईन रहें, गीबत शुमार नहीं होगी। मैं भी देखता हूं कि कैसे उन बाप बेटे में सुलह करा सकता हूं।
स्ट्रॉबेरी भी है, लेकर आऊं
मेरे भाई? मैं आपसे कह रहा हूं कि असल बात बताएं, और आप हैं कि मेरे लिए तरह तरह की मिठाइयां पेश किए जा रहे हैं। जी बताइए।
अल्लाह अकबर। देखिए हाजी साहब, ये बरात अली,
मरहूम अल्लामा अपने बेटे फखरुल मुहक्किकीन का जिक्र बहुत एहतराम से करते थे, और ये एहतराम दो तरफा था।
अजब।
वो जब भी अपने बेटे को बुलाते थे तो अजीब अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। फरमाते थे, मेरे मौला, मेरे आका फखरुल मुहक्किकीन। ये चीजें हमारी जिंदगी में भी नाफिज होनी चाहिए हाजी साहब।
हाजी साहब, इस तरह के 10 बेटे भी हो तो कम है। मैं आपका मतलब समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं,
आपका भला,
लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं आतिश मिजाज हूँ, गुस्सैल हूँ, मानता हूँ मैं, लेकिन ए लड़के, जरा सी अक्ल तुम्हारे भी भेजे में होनी चाहिए। तुम शादी करना चाहते हो, हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उस रजा कसाब की बेटी से करो, सिरी पाए वाले हसन की बेटी से करो, जिनसे मैं हर रोज जमात में मुसाफा करता रहता हूँ। अगर तालीमी घराने से करना चाहते हो तो नूरी किताब फरोश की बेटी है, उसका बाप सकाफती काम करता है
जी।
और तुम चले गए उस गाफिल जाहिल अकबर के पास, खुद को और हमें जलील कर दिया। इस बात से नाराजगी है मुझे।
अरे हाजी अहमद अली साहब, हर काम के अपने नशीबो फराज होते हैं, दीनी तालीम भी इसी तरह से है। खुद रसूल खुदा एक जमाने में गार में छिपने पर मजबूर थे, लेकिन बाद में वजू का पानी बतौर तबरुक ले जाने लगे। मैंने खुद भी कई मर्तबा टीवी प्रोग्राम में जो शादी से मुतालिक था, इस बात की तरफ इशारा किया है।
अच्छा।
कि लड़का और लड़की की आपसी रजामंदी जरूरी है। अब बिना पसंद के तो किसी को शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता भाई। लीजिए, मेरे पास गवाह भी मौजूद है।
रजा अली बेटा, अगर तुम्हें हाजी साहब से इतनी अकीदत और मोहब्बत है तो ये मोबाइल अपनी जेब में रखो।
रखो,
शाबाश, उठो इसको लो और चाय लेकर आओ, हाजी साहब के लिए दो ले आना। शाबाश मेरे अच्छे बेटे, शाबाश, एहतियात से जाना बेटा।
माशाल्लाह,
आज के बच्चे हैं ना, हमेशा टीवी से चिपके बैठे रहते हैं, एक दो बातें सीख लेते हैं, सोचते हैं कि उनको हर जगह बयान करना चाहिए। हाजी साहब आप अपनी बात जारी रखिए।
मैं अर्ज कर रहा था कि लड़का और लड़की की आपसी रजामंदी जरूरी है। हम लड़के से नहीं कह सकते कि जाके जैद की बेटी से शादी कर लो, ये नहीं हो सकता। हाजी अहमद अली साहब, ये नहीं हो सकता।
हाजी साहब अर्ज करूं कि ये लड़की बहुत मोमिन और अच्छी लड़की है, लेकिन खुदा अमान दे उसके बाप को। ओहो, आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ वो कैसी बला है। अगर बरात अली के मुअम्मम होने पर राजी हो भी जाता, शायद कुछ अरसे के बाद उसका ब्रेन वॉश करके कहता कि रूहानियत के लिबास को उतार फेंको। इस सूरत में हालात और भी खराब हो जाते।
अहमद अली साहब, आप वाकई में बहुत बदगुमान है। यही अकबर साहब जो है,
उसे अकबर गाफिल क्यों नहीं कहते।
न सिर्फ ये कि गाफिल नहीं है, बल्कि मौका आने पर उलमा की भलाई के लिए कदम भी उठाते हैं।
अकबर
जी, यही अकबर साहब, इन्होंने ही तो घर के कागजात के जरिए हाजी साहब की बहू को हवाला से निकाला है, वरना इनको मीरजाई साहब के पास वापस आने तक रुकना पड़ता और हाजी साहब की बहू को हवालात में रहना पड़ता।
महदवी साहब, अकबर ने वाकई जमानत के कागजात दिए?
जी, बगैर किसी लालच के।
खाक हो मेरे सर पर और बरात अली के सर पर, तो दोनों जहान की खाक हो। देखिए हाजी शहीदी साहब पर कैसे दिन आए हैं कि हर कसो नाकस के मोहताज हो रहे हैं।
अरे
खुदा, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मुझे ऐसा बेटा नसीब हुआ तुम्हारे सर पर खाक हो बरात अली।
अहमद अली साहब, अरे पहले मुझे अपनी बात तो कहने दें, उसके बाद आपका जो जी चाहे कर लीजिएगा।
महदवी साहब, आप मेहरबानी करें, जिस चीज की हकीकत के बारे में आपको इल्म नहीं है उसमें मदाखलत ना करें। माफ कीजिएगा जो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। ओहो, घंटी बज गई। लाओ लाओ। हेलो
रजाली बेटे।
जी आजी साहब।
तुम फिल्म बना रहे थे?
किसने उनको बाग में आने दिया? यूं ही बस मुंह उठा के बाग में आ जाते हैं,
समझे?
और तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
बेटा
मैं अभी आता हूँ, आता हूँ अभी। महदवी साहब माफ कीजिएगा, मुझे बाग में जाना है, एक जरूरी काम पड़ गया।
चलिए रजाली बेटा, खुदा
हाफिज़।
अरे अंसारी साहिबा, अंसारी साहिबा।
अच्छा हुआ जो आप आ गए, आपको पता है ये बाग कितने मीटर का है?
मोहतरमा अंसारी साहिबा, माफ कीजिएगा गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये कौन साहब हैं जो आपके साथ आकर बाग का मुआयना कर रहे हैं?
ये बल्दिया के स्पेशलिस्ट हैं।
सलाम
अलैकुम। सलाम, कैसे हैं आप?
आपको मुश्किल पेश आई है क्या? सब ठीक तो है, किस लिए तशरीफ लाए हैं?
कोई मसला पेश नहीं आया है, ये सिर्फ इन जमीनों की कीमत का अंदाजा लगाने आए हैं, आपको कोई एतराज?
जी इत्तेफाक से असल मसला यही है अंसारी साहिबा, क्या कोई इन बागात को बेचना चाहता है जो आप माहिर को लेकर आई हैं?
मोहतरमा आपने तो कहा था सब कुछ हल हो चुका है।
सब कुछ हल हो चुका है, मैंने खुद पहले शहीदी साहब से बात की है, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, क्या खूब कहा गया है कि मेरे और शेख के दरमियान फितनागरी की जा रही है, जबकि मुझे ही नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या साजिश की जा रही है। क्या हाजी साहब वक्फ की जमीनें बेच सकते हैं?
आप हमें अपना काम करने दें, आइए मैं आपको उस तरफ की जमीनें दिखाती हूँ।
आप अपना काम करिए, हमें भी अपना काम करना है, हमें भी कुछ लोगों से बात करनी होगी, देखते हैं क्या करना है। देखते हैं।
आप एक सलवात पढ़िए, फिर एक लंबी सांस लीजिए, फिर हम बात करते हैं।
ठीक है, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میں سن رہا ہوں حاجی صاحب.
اس خدا کی بندی نے ایک دعویٰ کیا ہے جو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں.
بہت خوب, اس بندہ حقیر کا سوال بھی یہی ہے کہ وہ کون سا ایسا دعویٰ ہے جس کی بنا پر یہ محترمہ سارا مال واپس لے کر اپنا بنا سکتی ہیں.
دعویٰ دعویٰ ہوتا ہے, ثابت ہونا اہم ہے.
ٹھیک ہے, آپ فرمائیے کہ کس طرح کا دعویٰ ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے.
یہ خدا کی بندی کہہ رہی ہے کہ یہ مدرسہ اور باغات اس کی امی کے تھے, اور حاجی حبیب نے غلطی سے ان کو ہبا کیا ہے, اور اس سے متعلق کاغذات بھی ہیں اس کے پاس.
اچھا, کتنی گستاخ ہے یہ عورت, یعنی آ کے ان باغات کو جو اس کے والد نے وقف کیے ہیں اور جو آپ کے لیے صرف باعث زحمت ہی رہے ہیں واپس لینا چاہتی ہے.
جو فرض حاجی حبیب نے میرے ذمے ڈالا تھا وہ زحمت نہیں تھی بلکہ رحمت تھی. مومن انسان کو دنیا کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے.
کیوں پریشان نہیں ہونا چاہیے حاجی صاحب, آپ ان کے گھر جا کر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ جھونک جو میں نے دیکھی ہے, یہ محترمہ جو مجھے نظر آئیں, یہ مستقبل میں آپ کے گلے پڑ جائیں گی, آپ دیکھ لیجیے گا.
میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے. جو ذمہ داری میرے ذمہ ڈالی گئی تھی میں نے اسے اپنی طاقت بھر نبھایا ہے.
معاف کیجیے گا, میرا مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے جو اس لہجے میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے فریضہ پورا پورا نبھایا ہے, یہ اپنی ذمہ داری پر خوب عمل کیا ہے, لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے, اور میں بدبخت بیچ میں پسا جا رہا ہوں. ایک طرف اس عورت کی ہر دھرمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور دوسری جانب اس اکبر غافل کے کاموں کا. آپ کو بالکل ہی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی بہو کس کی ضمانت سے باہر آئی ہے.
احمد علی صاحب, وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں.
یہ لیجیے, اکبر صاحب بھی اچھے آدمی ہیں, وہ بھی اچھے آدمی ہیں, یہ بھی اچھے آدمی ہیں, بس سب سے زیادہ برا میں ہی ہوں. معاف کیجیے گا حاجی صاحب, یہاں مناسب نہیں ہے. میں سہن میں جا کر سورج کے سامنے کوئی دیوار ڈھونڈتا ہوں اور پانچ بار اس پر اپنا سر مارتا ہوں تاکہ قصہ ختم ہو جائے بس.
السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم و رحمت اللہ.
قبول ہو حاجی صاحب, خدا قبول کرے.
حضرت حق قبول کرے.
یا حق, آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی.
حکم کیجیے.
کیا آپ حاجی شہیدی کے عقیدت مندوں میں سے نہیں ہیں؟
ہم حاجی صاحب پر جان چھڑکتے ہیں.
شاباش شاباش. کیا آپ ہر سال اپنا خمس و زکات حاجی صاحب کو نہیں دیتے؟
ہم تو بڑے فخر سے دیتے ہیں.
تو میں آپ کی بلائے لے لوں؟ جب آپ کو حاجی صاحب سے اتنی عقیدت ہے تو پھر آپ نے اس بات کو کیسے گوارا کیا کہ ایک بے دین شخص حاجی صاحب کی بہو کو جیل سے نکلوانے کے لیے اپنے گھر کے کاغذات گروی رکھوائے؟ کل کو اگر یہی شخص حاجی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا احسان جتائے تو ہم اور آپ جیسے لوگ کیا کریں گے بتائیے.
مجھے تو آخر میں اصل بات کا پتہ چلا.
خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے. اب تو معلوم ہو گیا نا, تو جا کے کسی گھر کے کاغذات کا انتظام کر دیجیے تاکہ یہ شخص اپنے کاغذات لے کر دفاع ہو جائے.
مجھے یہ کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ خود میرزائی صاحب یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
اس وقت میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور ہر طرح سے آپ پر اعتماد بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے.
یہ کہ آپ کو ہم پر بھروسہ ہے یہ الگ بات ہے, لیکن میرزائی صاحب نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, یہ سوال اپنی جگہ پر ہے.
نہیں اٹھایا تو نہ صحیح, جناب آپ کی طرح کے انسان بہت ہیں.
جی ہاں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.
تو پھر
حاجی شہیدی صاحب جیسے لوگ کم ملتے ہیں جن کی خدمت کا موقع ملتا ہے, لیکن اگر اس کیس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تو خود میرزائی صاحب یہ کام کر چکے ہوتے.
آپ کے لیکن ویکن سے میں سمجھ گیا کہ آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. خدا حافظ, آپ کا اجر محفوظ.
اگر کوئی معقول خدمت ہو تو کرنے کے لیے تیار ہوں.
میں جا رہا ہوں.
احمد علی صاحب.
جی.
کل کو جا کے ہمارے اوپر بھی بے دینی کا ٹھپا نہ لگا دینا, نہ کہنا کہ اس نے حاجی شہیدی کے لیے کچھ نہیں کیا.
نہیں لگاؤں گا, نہیں لگاؤں گا.
واللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تمہاری قسم سچ کہہ رہا ہوں.
مرزائی صاحب, مرزائی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نہیں نہیں نہیں,
ایک بات عرض کرنی تھی آپ سے.
کیا ہوا, پریشان
فون کاٹے تو بتاتا ہوں میں.
تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں, تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا میں بعد میں فون کرتا ہوں تمہیں, بعد میں کرتا ہوں. خدا حافظ. ہاں بولو کیا ہے.
آپ کے رشتہ داروں نے پریشان کیا ہوا ہے.
میرے رشتہ داروں نے؟
یہ آپ کی سالی کون ہے جو فیتا ہاتھ میں لے کر حاجی صاحب کی زمینوں کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے؟ کون ہے یہ؟
تھوڑا آہستہ آہستہ.
میں تو آہستہ ہی بول رہا ہوں.
کس نے فیتا ہاتھ میں پکڑا ہے؟
उसी मरहूम हाजी हबीब की बेटी का कह रहा हूँ जो बाहर मुल्क से आई है, आपको तो मालूम है।
अच्छा तो
जी देखिए, प्रॉपर्टी का माहिर लेकर आई थी हाजी साहब की जमीनों की कीमत लगवाने। आप भी अगर मेहरबानी करके मायदा साहिबा के केस में जमीन के कागजात रखवाते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती कि हमें उस अकबर का एहसान मंद होना पड़ता।
हाजी अहमद अली, मैं हुदा साहिबा के कामों से बिल्कुल लाइल्म हूँ।
बिल्कुल खबर नहीं है, खबर नहीं है। अच्छा खुदा हाफिज।
हाजी अहमद अली, इधर उधर लगाई बुझाई मत करना, हमें इस मामले को घर के अंदर हल करने दो।
हल कर लेंगे। जाओ, जाओ। कर लीजिए, खुदा हाफिज।
हेलो, सलाम जोहरा बेगम, कैसे हो? खाना खा लिया? जोहरा बेगम, तुम्हें एक जहमत देनी थी। लगता है हुदा साहिबा ने फैसला किया है कि हाजी साहब के बागात को उनके कब्जे से निकाल के रहेगी। अच्छी बात नहीं है हाजी साहब के साथ इस ज़ईफ़ुल उम्री में ऐसा सलूक किया जाए। हाँ, तुम एक काम करो, हाजी साहब और मायदा को फोन करके कहो कि हाज हबीब के घर पहुंच जाए, मिल बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते हैं।
इसका हल ये है कि इस घर को बेच के बच्चों का कुछ कर्जा चुका देते हैं, मैं भी अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाती हूँ।
ये घर पूरा आपका ही?
क्या मतलब?
हुदा को पैसे की जरूरत थी, मैंने उसका हिस्सा नकद खरीदा, तुम्हें मुनासिब मौके पर बताना चाहता था।
तो पैसों का क्या किया? बाहर मुल्क भेज दिया।
ये वक्त पैसे भेजने का था?
मुझे क्या पता था ऐसी मुश्किल पेश आएगी। आप कोई राह हल दिखाइए, मैं अपना दावा वापस ले लेती हूँ। ये 1-2 मिलियन की बात नहीं है, इससे भी ज्यादा की है।
यानी बच्चों की गलती के तलाकी के लिए हम जाके हाजी साहब से बाग वापस ले लें?
जोहरा बेटी, ना वो बागात हाजी साहब के है ना मदरसा, सबको उसी वक्त वक्फ कर दिया गया था।
अगर तुम अपने दावे पर ज्यादा इसरार करोगी तो लोग हाजी साहब से बदजन हो जाएंगे।
लोगों की बदगुमानी या खुशगुमानी हाजी साहब के लिए अहम नहीं है दाऊद साहब, अहम वो हक है जो हकदार को पहुंचना चाहिए। अब बेहतर है हम इस बात पर सोचें कि इस केस में हर किसी का हिस्सा कितना है। हमने तो अपना सारा कुछ उसकी खातिर बेच दिया। इस कर्जे के 3 में से 2 हिस्से हमारे जिम्मे हैं।
और तीसरा हिस्सा किसके जिम्मे है?
आरिश के जिम्मे, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट में शरीक था, अब खुद को कैसे उससे हटा सकता है।
आरश के पास तो 1 पैसा भी नहीं है।
लेकिन आप तो हैं दाऊद साहब, आपको ना तो घर बेचने की जरूरत है ना बेघर होने की।
नजमा साहिबा, मैं ना तो शरण आरश के कर्जे का जिम्मेदार हूँ और ना उर्फन, ये केस पहले भी मुझे बाजार में काफी बदनाम कर चुका है।
दाऊद,
मेरे पास कोई पैसा है क्या?
होता ही कब है।
तो सब्र कर लेते हैं, जब तक मेरा माल आए और मैं उसको बेचूं उस वक्त तक अगर कर्ज ख्वाह सब्र कर लेते हैं तो मैं दे दूंगा।
जब भी बात पैसे की होती है हर वक्त तुम्हारे हाथ खाली ही होते हैं।
देखो हुदा खानम, तुमने ऐसा कदम उठाया है कि मुझे इस केस में विलन समझा जा रहा है।
कैसी बातें कर रहे?
एक तरफ वो अहमद अली है जिसने आज बाजार में जो मुंह में आया मुझे सुनाया, और दूसरी तरफ ये तुम्हारी हमशीरा साहिबा।
मैं तो ये कह रही हूँ ना, आप गुलशन आबाद की जमीनों और बागात को बेच दें, ऐसे में मैं विलन बन जाऊंगी और मेरे लिए ये बात बिल्कुल अहम नहीं।
खुदा बेटी, अगर जैसा कि तुम कह रही हो ऐसा हुआ तो पता है इसका मतलब क्या होगा? ये होगा कि आज तक इस बाग का जितना पैसा फलाह व बहबूद के कामों में लगा है वो मशकूक था, और जिन लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी है उनकी नमाजें भी मशकूक हो जाएंगी। अगर किसी तलबा ने यहाँ सबक पढ़ा हो तो उसकी जगह गजबी थी। तुम इन बातों को समझती हो मेरी बच्ची?
अभी तक तो किसी ने एतराज नहीं किया है, अम्मी ने भी तो कुछ नहीं कहा है, लिहाजा शुबा ईजाद नहीं होना चाहिए।
ये सब तुम्हारी गलती है। जिस दिन बागात और मदरसा तुम्हारे हवाले किया जाएगा तो उस दिन सब लोग जाके अपनी इबादतों का हिसाब हाजी साहब से मांगने लगेंगे।
आपको भी लोगों की इबादत और हाजी साहब की तरफदारी करने के बजाय अपने बेटे और मायदा की फिक्र करनी चाहिए।
इस पूरे मुद्दत में कौन मायदा का ख्याल रख रहा था? अपनी माँ से भी ज्यादा इसका ख्याल रखा है। अब इतने अरसे के बाद तुम यहाँ आकर मुझे ताने दे रही हो जिसने इसका इतना ख्याल रखा।
बेगम, तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो।
इसकी इतनी बकवास के आगे मैं कैसे कंट्रोल रख सकती हूँ? चलो यहाँ से।
अरे बेगम, गुस्से से तो काम नहीं बनेगा ना।
तुम्हें नहीं आना तो मैं आरश को बुला लेती हूँ।
मैं चल रहा हूँ बेगम। अच्छा चलते हैं हुदा खानम, अगर आप लोगों को चलना है तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। चलो। आप लोग खुदा से गैर मुनासिब सुलूक करते हैं और जरी कर देते हैं।
दाऊद, खुदा के लिए बस करें।
तुमने इतने सालों के बाद भी अपनी बहन को नहीं पहचाना, भूल गई हो क्या? उसकी शादी के मसले में सबने इतनी मुखालफत की कि वो जिद पर उतराई और खुद को मुसीबत में डाला।
दाऊद साहब, आप ही बताएं हम क्या करें।
नरमी, वही चीज जो हाजी साहब करते हैं, अगर सईद के साथ उसकी शादी में भी नरमी से काम ना लेते तो खुदा अपने आप को और बड़ी मुसीबत में डाल लेती।
इसको नरमी और मुरव्वत नहीं कहते। हाजी साहब बचपन से ही हुदा को बहुत चाहते थे। जब वो अब्बू हुदा के साथ लड़ती थी, हाजी साहब हुदा का साथ देते।
ये कैसी बातें कर रही हो जोहरा?
सच कह रही हूँ मैं।
हाजी साहब हमेशा हक का साइड लेते हैं। अगर हुदा का साइड लेना चाहते तो अपनी माँ के साथ इस लड़की के जाने की मुखालिफत ना करते।
हाजी साहब को इन सब से क्या मतलब? दाऊद साहब आप भी अजीब बातें करते हैं।
आप मायदा को सारी बातें जान लेने दीजिए। हुदा ऐसी बातें कर रही है कि हाजी साहब इस लड़की के सामने हल्के हो जाएंगे।
किस्सा क्या है दाऊद साहब? अम्मी दाऊद साहब ये किस बारे में बात कर रहे हैं?
नहीं कुछ नहीं कहा, बेचारी रो रही थी। मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आया। अब मैं क्या बताऊं? आखिर ये कैसी बात थी जो अचानक दाऊद साहब के मुंह से निकल गई? अब पछताने से क्या फायदा मेरी बच्ची? ठीक है बेटा।
मायदा, मायदा बेगम, तुम यहां बैठी हो? तुम रो क्यों रही हो? माफ कर देना मायदा, यकीन करो मैं तुम्हें हक बेजानिब समझता हूँ। यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम कुछ ऐसा करती कि मैं जेल चला जाता,
तुम जानते थे कि अबू जान ने मुझे अम्मी के साथ नहीं जाने दिया था?
अबू जान ने?
जब मेरे अब्बा और अम्मी एक दूसरे से अलग हुए थे, अम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी।
नहीं मायदा, केस चला अदालत में तुम्हारी सरपरस्ती को।
लेकिन अम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी।
क्या मतलब?
अब्बू जान इस बात के बाइस बने कि हम इतने साल तक एक दूसरे से अलग रहे।
देखो मैं अब्बू जान के काम की तौजीह नहीं करना चाहता, लेकिन अगर फैसला तुम्हारे हाथ में होता तो तुम अपनी माँ के साथ जाने को तरजीह देती या यहाँ रहने को?
नहीं मालूम, लेकिन इतने साल बगैर माँ के जिंदगी गुजारनी ना पड़ती। मेरी अम्मी ने बहुत मसायब झेले हैं, इतने साल तक सब मुझसे झूठ बोलते रहे।
काश जाके उससे बात कर लेते ताकि हालात इससे ज्यादा बदतर ना हो जाएं।
हमारा फर्ज ये है कि हमेशा और हर जगह हकीकत कहें। ये कि हालात खराब होते हैं या ठीक, ये हमारे हाथ में नहीं।
खुदा ने इंसान को अक्ल दी है ताकि बाज़ औकात बाज़ बातें मुंह से निकालें या ना निकालें। दाऊद साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी।
ये आपका ख्याल है, लेकिन हकीकत को छुपाना जुर्म है। एक इंसान की जिंदगी का मसला है ये।
आपके ख्याल में दाऊद साहब ने ये कहकर अच्छा काम किया, क्या हुदा सुनकर नाराज नहीं होगी?
ला इलाहा इल्लल्लाह।
असल में आपको इब्तदा ही से मोहम्मद हुसैन को मदरसे से जाने नहीं देना चाहिए था। अगर मदरसे में रहता तो ये सारी मुसीबतें, कंपनी, कर्ज, बैंक और इस तरह के मसाइल पेश ना।
मैंने अगर मोहम्मद हुसैन को तलबा बनने से रोका तो उसकी एक वजह थी। जो इंसान तलबा बनना चाहता हो उसमें कुछ इब्तदाई शरायत होने चाहिए।
क्या मतलब हाजी साहब? यानी इस वक्त जो भी वहाँ पढ़ रहा है वो मेरे मोहम्मद हुसैन से बेहतर?
ला इलाहा इल्लल्लाह। मसला बेहतर और बरतर होने का नहीं है। मसला ये है कि अगर एक तलबा मानवी सहरो सलूक ना रखता हो और दुनिया को ना छोड़ना चाहता हो तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी मुजिर साबित हो सकता है।
हाँ अबू जान, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मुआशरे के लिए मुजिर हूँ। मैंने एक गलती की, एक नहायत बड़ा कर्जा अपने ऊपर चढ़ाया। आप बेफिक्र रहें, मैं एक एक पैसा लोगों का अदा कर दूंगा। अब आप इतना आपस में न लड़े।
बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अब्बू का ये मतलब नहीं था।
देखिए अम्मी जान, मुझे इब्तिदा से ही सेरो सुलूक और इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी चाहता था कि आम लोगों की तरह से जिंदगी गुजारूं। ये क्या गुनाह है क्या?
किसने कहा कि ये गुनाह है?
आपकी गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है। अगर इब्तिदा ही से यहाँ रहने पर राजी न होता तो हर रोज एक दूसरे को न देखते और आप इत्मीनान से अपनी बातें करते और कोई इस तरह से मुझे अपनी बातें न सुनाता। और जब से ये हुदा साहिबा आई हैं हालात बद से बदतर होते गए हैं। हर रोज एक नई हकीकत यहाँ होती है। अभी मायदा क्या कह रही है?
किस बात का कह रहे
हैं? अम्मी जान खुदा के लिए अनजान ना बने, ऐसा जाहिर ना करें कि आपको जानती ही नहीं है।
मोहम्मद हुसैन, तुम मुझे कुछ कहने की इजाजत दोगे? अगरचे उन दिनों हालात काफी दुश्वार और पेचीदा थे, फैसला करना मुश्किल और दुश्वार था, लेकिन मैंने मायदा की मसलहत इसमें जानी कि वो यहाँ रहे।
सलाह और मसलहत अब्बू जान?
हाँ, मसलहत और भलाई। वो भलाई जिसको दीन ने कहा है, वो खैर और मसलहत जो कानून कहता है। अदालत ने बच्चे की सरपरस्ती बाप को दी थी, अगरचे वो अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन अदालत की राय ये थी कि अपनी बेटी के लिए वो अच्छा बाप बन सकता था। खुदा बेटी ने भी फैसला किया था कि अपने शौहर को बताए बगैर माहिदा को ले जाए। जानते हो, अगर जलील साहब शिकायत करते और खुदा के लिए गिरफ्तारी का वारंट ले लेते, तो ये बात माहिदा पर कितना बुरा असर डालती। दूसरी बात, माहिदा का यहाँ रहना एक उम्मीद की किरण बन सकता था हुदा की दोबारा वापसी के लिए।
आपने पहले क्यों नहीं बताया अबू जान? आप आइए, आके देखिए मायदा की क्या हालत हो गई है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर किसी दिन मायदा को पता चला तो मुमकिन है ये हमारे ताल्लुकात पर भी असर डाले?
ये सब मेरी गलती है बेटा, मेरी ही गलती है। मेरी कोताहियों का नतीजा है ये कि मैंने राजदारी से काम लिया। मैं मायदा को परेशान नहीं देखना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि उसको इन हालात का पता चले।
बड़ी नवाजिश की आपने, अब चलता हूं।
हेलो।
हेलो मोहम्मद हुसैन, सलाम।
सलाम,
कहां पर हो तुम?
बताओ क्या काम है
तुम्हें? कहीं कोई काम तो नहीं है?
नहीं।
जरा जल्दी से मदरसे आ जाओ, मुझे तुमसे काम है।
क्या काम है?
मैं बोल रहा हूँ ना, तुमसे मुझे काम है।
भाई फर्ज करें, अगर आ भी गया तो जब वो हाजी शहीदी साहब की बात नहीं सुन रहा तो मेरी बात क्या सुनेगा भाई?
हाजी साहब, आपकी समझाने की सलाहियत बहुत अच्छी है, आप 5 मिनट बात करेंगे वो समझ जाएगा।
आपकी मेहरबानी है, लेकिन मेरी बात में जितना भी
असर नहीं है हाजी साहब कि आपको अपने काबिलियत का इल्म नहीं है। मेरा एक खाला जात था, उससे इतना कहा शादी करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। उसकी माँ ने आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड किए ताकि वो गाड़ी में सुने। 1 महीने के अंदर अंदर वो शादी के लिए तैयार हो गया।
वाकई?
यकीन
करें। क्या अल्हम्दुलिल्लाह उसने शादी कर ली?
शादी की या नहीं, लेकिन तैयार हो गया।
हो गए, कहा आएंगे। अब क्या बताऊं, इस वक्त तो इन बाप बेटे पर मेरी बातों का असर बिल्कुल सिफर है।
इंशाल्लाह सब हल हो जाएगा, आप फिक्र न करें। चलिए आज साहब,
चलिए आइए।
सुनिए, पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि सबसे बेचारा इंसान वो है, जरा तवज्जो फरमाइए, कि सबसे बेचारा इंसान वो है जो अपने नेक आमाल के साथ महशर में दाखिल होगा, और जब वो जन्नत में दाखिल होना चाहेगा तो कुछ आदमी उसको रोक लेंगे, और जब उनसे रोकने की वजह पूछेगा तो पता चलेगा कि अफसोस, उसने लोगों के हुकूक पामाल किए हैं। फिर वो फरिश्तों से मदद मांगेगा, वो कहेंगे उनसे माफी मांगो। अब उसे माफी कैसे मांगनी होगी? उसे अपने नेक आमाल देने होंगे, तब उसे माफी मिलेगी। और जब ये काम वो कर लेगा तो देखेगा कि अफसोस, खुद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है।
अब इजाजत दें, मैं चलता हूँ।
बैठिए मोहम्मद हुसैन साहब, बैठिए।
असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब इजाजत दें, किसी और टाइम पर रख देते हैं।
आप तो माशाल्लाह समझदार इंसान हैं। लालच के इस दांत को निकालिए और निकाल कर।
अरे कौन सा लालच का दांत?
धीरे, बरात अली साहब, जरा दरवाजा बंद कर दें। मुस्लिम साहब का मकसद है कि आप कर्ज खाहों के साथ सुलह कर लें, यही।
भाई साहब, क्या आपके ख्याल में हम सुलह कर सकते थे और नहीं किया?
अगर लोगों को पैसे की जगह प्रोजेक्ट की जमीनें दे दें तो हो सकता है। जाके पटवारी लाइए, जिस जिसने जितना पैसा दिया है उसके मुताबिक उसको जमीन दे दें।
वो जमीनें इस वक्त जरूरी जमीनों की कीमत रखती हैं। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तब भी लोगों का कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा।
लोगों ने अपना सब कुछ इनके हवाले कर दिया है
तो मुझ पर भरोसा रखें, थोड़ा सा सब्र कर लें, जब तक मैं कोई मसले का हल निकाल लूंगा।
अगर सब्र ना किया तो क्या?
तो जाके वो अपने केस को आगे बढ़ाए।
ये केस सिर्फ तुम्हारे हक में बुरा नहीं है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हाजी साहब की भी बदनामी हो जाएगी।
जिस हाजी साहब की आप बात कर रहे हैं वो मेरे वालिद भी हैं।
हाजी साहब हम सब पर एक बाप की तरह हक रखते हैं।
तुम अगर हाजी साहब के हक को मानते तो उनकी बात पर कान धरते।
ये क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है?
पता नहीं मुझे क्यों हर एक बंदे को जवाब देना पड़ रहा है। अगर मेरे वालिद आलिम हैं तो क्या मुझे कुछ भी करने का हक हासिल नहीं है?
मोहम्मद हुसैन साहब, इस वक्त आप गुस्से में हैं। एक दो जरा लंबी सांसें लें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
देखिए हाजी साहब, मैं इन जमीनों को न जराई जमीनों की कीमत पर और न ही किसी और कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस तरह से लोग समझेंगे कि मैं एक नालायक इंसान हूँ। यह मुसीबत मुरादी ने हम पर नाजिल की है, जैसे भी हो मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे लोगों का हक लेके रहूंगा। वसलाम, चलता हूँ।
अगर आप लोगों को खुद ही बात करनी थी तो फिर मुझे बीच में क्यों डाला?
मैंने कितने प्रोग्राम बना रखे थे। चाहता था कि तुम्हारी अगली सालगिरह पर घर तैयार रहे। तुम्हें सालगिरह से चंद दिन पहले सफर पर भेजना चाहता था ताकि जब वापस आओ तो नए घर में कदम रखो। नहीं हो सका, अचानक सब कुछ खराब हो गया। तुम्हारे बकौल अगर अपनी अम्मी के साथ चली जाती तो शायद इस वक्त हालात बेहतर होते, कम अज कम मेरे जाल में न फंसती तुम।
अब्बू जान हमेशा कहा करते थे, अल खैरो फीमा वका। बाज़ोकात अगर कुछ भी होता है तो हम खुद से शिकायत करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि बहुत देर हो चुकी है।
मेरी अम्मी जान को हमेशा से एक आलिम बेटे की आरजू थी। शुक्र है कि उन्हें एक आलिमा बहू मिल गई।
अम्मी जान की पूरी कोशिश है कि गुलशनाबाद के बागात को अब्बू जान से वापस ले लें। कबल इसके कि हमारे घर का शिरादा बिखर जाए, कुछ करो मोहम्मद हुसैन।
अच्छा, तुम एक टाइम तय करके मुझे बताओ कि इस अरसे में कर्जखाहों को अपनी शिकायत वापस लेने पे राजी कर सकोगे?
अभी तो मैं कोई टाइम मुअय्यन नहीं कर सकता।
तो किस आस पर मैं अपनी विरासत से दस्त बरदार हो जाऊँ?
आप खुद जानती हैं कि वो विरासत आपकी नहीं है।
मैं तहरीरी दलील और सबूत के बिना पे बात कर रही हूँ, तुम्हारा नजरिया अहम नहीं है।
यानी आपको हमारे हाजी साहब पर एतबार नहीं है?
मैं इस सिलसिले में कानून के फैसले को तरजीह देती हूँ, ये कि मुझे किस पर एतमाद है और किस पर नहीं ज्यादा अहम नहीं है। तुमने अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाई। हाजी साहब को आगे आके तुम्हारे कर्जे चुकाने चाहिए थे। एक पुराने घर और चंद भेड़ों के बेचने से कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारी ये बात भी कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा बेकार है, तुम खुद भी जानते हो। अगर ये प्रोजेक्ट सही होता अभी तक मिर्जाई साहब आगे आके तुम्हारे कर्जों को चुका चुके होते। अगर अब तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाया इसका मतलब वो इस पे यकीन नहीं रखते, यानी वो जानते हैं कि पैसा देने से उनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके मायदा को बचाने के लिए मुझे खुद कार्रवाई करने दो। अगर किसी को जहन्नुम में जाना ही है तो मुझे जाने दो।
तो इस बीच मेरे बाबा की इज्जत का क्या होगा?
तुम्हारे अबू मशहूर आदमी हैं। तुम मुतमईन रहो कि कोई मोमिन मिल जाएगा जो मदरसे के लिए इससे अच्छी और बेहतर जमीन खरीद कर दे देगा।
खुदा साहिबा, कम से कम मुझे चंद दिनों की मोहलत ही दे दें, शायद इस अरसे में मुरादी को ढूंढ सकूं।
तुम खुद जानते हो कि यह मोहलत सिर्फ वक्त जाया करना है, मुझे वक्त जाया करने की आदत नहीं।
मजीद, मजीद।
सलाम।
सलाम। देखो, मैं आपनुमा प्रोजेक्ट का 5% हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं। अगर तुम चाहो तो अभी कचहरी जाकर तुम्हारा नाम कर देता हूँ।
मुझे मुरादी की कोई खबर नहीं है।
मजीद, 10% ठीक रहेगा?
मेरा भाई पूरी जिंदगी सही रास्ते पर रहा, लेकिन जो ही तुम्हारे प्रोजेक्ट में शामिल हुआ उस पर तोहमतें लगनी शुरू हो गई। शिकायत तो मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं।
मजीद, तुम्हारे भाई ने रिश्वत दी है और उसको मेरी गर्दन पर डाल रहा है, तुम समझ रहे हो ये बात?
अरे मुझे क्या पता तुम्हारे बीच क्या हुआ है। अगर मेरे भाई ने कोई गलत काम किया है तो तुम लोगों ने फंसाया होगा उसे। बेचारा ऐसे जाल में फंस गया है कि खुद भी नहीं जानता कि क्या हुआ।
तुम बहुत बेशर्म हो।
मुंह संभाल कर बात करो।
अलबत्ता तुम्हें उसका दफा करना भी चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसा तुम्हारे ही घर में आया है ना।
देखो, एक महीना पहले मैं एक लड़की का रिश्ता मांगने गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तय पाया था कि मंगनी की रस्म मुहर्रम से पहले ही अदा की जाएगी, लेकिन उसकी माँ ने परसों रात फोन करके सब कुछ कैंसिल कर दिया। जानते हैं क्यों? कह रही थी कि मेरा एक भाई फ्रॉडी है और रिश्वत देने वाला है। इन सब बातों को तुम नहीं समझोगे। उस लड़की को जिसे मैं चाहता हूँ बुलाने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है तुम नहीं समझोगे। जाओ भाई जाओ।
देखो मुझे किस्सा सुनाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ तुम। हमारी यहाँ पे इज्जत है, बस एक जुमले में बताओ मुझे कमीना भाई कहाँ है। थका दिया है तुम लोगों ने मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। अरे
अस्सलाम हाजी साहब।
बेगैरत। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। देखिए जिस वक्त आपको गुस्सा आए एक सलावत भेजिए और पुरसकून हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजीद साहब मेहरबानी करके मुझे जल्दी से मदरसे पहुंचाएं।
माफ कीजिएगा, पहले
मुमकिन हो तो ये काम बाद में कर लीजिएगा, मुझे जल्दी है जरा पहुंचा दें। खुदा हाफिज। अरे
ऐसे ऐसे लोगों से इल्तिमास करना पड़ा जिनसे कभी कुछ नहीं मांगा था, सब ढूंढ रहे हैं उसे। लगता है अब मुरादी कहीं नहीं जा पाएगा।
क्या फायदा, नतीजा क्या निकला?
नतीजा देखने के लिए रुकना पड़ेगा।
मुझे यकीन है कि इस मजीद को अपने भाई की जगह का पता है।
नहीं, मजीद अपने भाई से मुख्तलिफ है। इस मसले की वजह से वो काफी शर्मिंदा है।
पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती।
फजूल बातें क्यों कर रहे हो लड़के? मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क में उसको ढूंढ रहे हैं, सब अलर्ट हैं कि मुरादी का कहीं पता चल सके।
खुदा हाफिज।
अरे एकदम से कहां चले?
छोड़ो, तुम्हारे पापा ने हमें बुद्धू बनाया है।
कैसी बातें कर रहे हो, बजाहिर पुरसुकून नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत परेशान।
तुम्हारे अब्बू की वजह से इस शहर में हमारा कोई भी भरोसा नहीं कर रहा।
लेकिन इस बात का मेरे अब्बू से क्या रब्त है?
सब कहते हैं कि अगर इस दलदल से निकलना मुमकिन होता तो मिर्जाए उनका हाथ पकड़कर उनको निकाल देते।
पर मेरे बाबा बेचारे के पास देने के लिए पैसे नहीं।
कहो बेचारा, वो बेचारे नहीं है।
अच्छा छोड़ो, तुम्हारे ख्याल से मजीद को उसके भाई के ठिकाने का पता है?
हाँ शायद उसका भाई है।
तुम चाहो तो एक दो बंदों से पिटाई करवा के उससे उगलवा लेते।
नहीं,
बरात अली, बरात अली,
क्या मुझसे काम था?
नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे कह रहे हैं, ये बाप बेटे के बीच का मसला है। जब भी यहां से गुजरते हैं तो ये मुझे सलाम वगैरह करके गुजरते हैं।
एक काम करो, बाइक लेकर के जाओ उस तरफ और देखो उन लोगों ने कितना काम किया।
मैंने आधे घंटे पहले जब सिरूज से बात की थी तो कह रहा था कि आधी जमीनों में हल चला चुका है।
ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन सुनो
हाँ।
फिर भी जाकर जरा एक बार देखाओ, मजदूरों के सर पर अगर कोई देखभाल करने वाला ना हो तो वो सही से काम नहीं करते।
ठीक,
मेरी इस बात को हमेशा याद रखना तुम। ये बात तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगी। है
ठीक ठीक।
सलाम बरात अली साहब।
सलाम।
ये हाजरा बहन ने दिया है, ये लीजिए।
शुक्रिया।
लीजिए।
वो खुद कहाँ पर हैं? खुद क्यों नहीं आई वो?
वो पढ़ाई कर रही हैं।
आतिफा साहिबा, माफ कीजिएगा, ये लीजिए आपके लिए।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं आतिफा साहिबा, माफ कीजिएगा, वो सबक ही पढ़ रही थी ना?
सच बताऊं तो वो बेकार घर पर बैठी हैं, बहाने से बोल दिया कि पढ़ाई कर रही हूँ। खुदा हाफिज।
सलाम।
वालेकुम सलाम, बताइए।
ये आपके लिए है।
किसकी तरफ से है?
ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं चलता हूँ।
इसे किसने भेजा है?
एक साहब ने।
वो कौन है जिसने तुम्हें ये खत दिया है?
मैंने उसका शनाख्ती कार्ड तो चेक किया नहीं, मुझे क्या मालूम।
हेलो,
मेरा खत खोला?
कौन?
नहीं पहचाना?
अरे करमीने मुरादी, मैं
इस वक्त जो एड्रेस कागज के पीछे लिखा हुआ है, आ जाओ अकेले, क्योंकि तुम खुद भी फंसे हुए हो।
मैं फंसा हुआ हूँ? तुम अगर मुझे मिले ना। हेलो, हेलो आरश, कहाँ हो?
देखो इस कमीने मुरादी की शहर में एक सौतेली बहन भी है, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि उसे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं।
सुराग रेसा, मैंने उसको यहीं पर ढूंढ लिया और तुम अपने इर्द गिर्द घूम रहे हो। बरात अली, बरात अली,
आता हूं,
आ जाओ। मुरादी ने मुझे फोन किया था।
अच्छा,
एक जगह का बताया, जाकर उससे वहां मिलना है।
मेरी कसम खाओ, सच बोल रहे हो?
हाँ भाई, उसने खुद फोन करके कहा है कि उससे मिल लूं।
तो तुमने क्या किया, पुलिस को फोन किया क्या?
नहीं, यानी फिलहाल नहीं। उसने कहा है कुछ बातें हैं जो पहले वो मुझे बताएगा।
मोहम्मद हुसैन, ये लोग खतरनाक किस्म के लोग हैं।
जानता हूँ बरात अली, जानता हूँ, क्या करूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि साथ चलते हैं, चलोगे?
हाँ चलते हैं, बस जरा एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। अकबर साहब, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।
ये काम करने का कौन सा तरीका है, हर घंटे बहाना बना के चले जाते हो।
आने के बाद आपको सब कुछ बताता हूँ, बताऊंगा।
मजाक करने की जरूरत नहीं है। वो बेलचा कहाँ ले जा रहे हो?
ये क्यों ला रहे हो अपने, जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो बैठो।
मैं जानता था अगर तुम्हारे भाई के पीछे पड़ूंगा तो तुम बेगैरत आदमी सामने आओगे।
मुझे तो अपने भाई का कुछ पता ही नहीं है।
अच्छा, तुम कहोगे और मैं यकीन कर लूंगा।
अगर उससे रابطہ होता तो तुम्हें यहाँ बुलाता ही नहीं, यानी तुमसे कोई काम ही नहीं था जो तुम्हें बुलाता।
मैं ही तुम्हें घसीट के ले जाऊंगा और हवाले करूंगा, मैं खुद।
तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तुम बेगैरत ने मुझे धोखा दिया, तुम कमीने ने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करवाई, और अब यहाँ खड़े होकर मेरे सामने गुस्ताखी भी कर रहे हो। देखो, तुम इस लायक हो कि यहीं पर तुम्हें मार मार के अधमरा कर दूं।
मोहम्मद हुसैन, तुम्हें याद है कि एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी का मकरूज हूँ, जो पैसा तुम मुझे देना चाहते हो वो उसके अकाउंट में डाल दो।
देखो, मैं यहाँ तुम्हारे किस्से सुनने नहीं आया।
जानते हो वो अकाउंट किसका था?
कौन था, जो भी हो।
नहीं ना, यही तो बात है, वह अकाउंट उस आदमी का था जिसने रिश्वत ली ताकि तुम्हारे लिए जमीनों की हैसियत बदलवा सके।
बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, डरपोक है ना?
पेपर मैंने जो तुम्हें भेजा था उसको पढ़ो जरा, वह अकाउंट इब्राहिम रजा निजात का है। तुम जाके मालूम करवा सकते हो कि इस केस की वजह से कौन जेल गया है।
मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। तुम बेगैरत ने कहा कि जाके इसके अकाउंट में पैसा डालूं।
कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? आबनुमा प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम है, इसका मुनाफा भी तुम्हारी जेब में गया है। सब यही समझेंगे कि हम दोनों मिले हुए थे। बड़ी आसानी से रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें जेल हो जाएगी। अगर तुम वही करोगे जो मैं बताऊंगा तो असल रसीद तुम्हें दे दूंगा और किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। तुम मजीद की जान छोड़ दो, तुम उसके पीछे मत पड़ो। और जो मैंने कालीने खरीदी हैं उसे तुम्हें समंदर पार भेजना होगा।
तुमने हमारे पैसे से जाके कालीने खरीदी?
ये गोदाम की रसीद है, अपने पास रखो, कल बताऊंगा कि क्या करना है।
मोहम्मद हुसैन, वो मुरादी ही था ना जो बाइक लेके चला गया? मोहम्मद हुसैन, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, मुरादी था, चला गया। गाड़ी स्टार्ट करो, उसके पीछे चलते हैं।
जाने दो उसको।
जाने दे? क्यों जाने दे?
बरात अली, वादा करो कि आज किस वाकये के बारे में किसी से बात नहीं करोगे, वरना सबसे पहले जो आदमी फंसेगा वो मैं होऊंगा। मुरादी ने मेरे लिए जाल बिछाया है, उस कमीने ने अपने खेल में मुझे बुरी तरह से फंसा लिया है।
या मेरे खुदा,
बुरी तरह से फंस गया हूं।
अच्छा, मोहम्मद हुसैन मुझे बताना नहीं चाहता कि क्या हुआ?
आज के वाकये को बिल्कुल भूल जाओ।